آگے دیکھیے بھائی، فصل دوم در بیان منصرف و غیر منصرف. منصرف آن است که هیچ سبب از اسباب منع صرف درون نباشد، و غیر منصرف آن است که دو سبب از اسباب منع صرف درو باشد، و اسباب منع صرف نه است: عدل و وصف و تانیس و معرفه و عجمه و جمع و ترکیب و وزن فعل و الف و نون مزیدتان. گزشتہ سبق میں آپ نے توابع کی آخری دو قسمیں یعنی عطف بحرف اور عطف بیان کے بارے میں پڑھا تھا. عطف بحرف انہوں نے آپ کو بتلایا کہ عطف بحرف وہ تابع ہے کہ جو حرف عطف کے بعد آئے، اور تابع اور متبوع دونوں مقصود بالنسبت ہوتے ہیں، یعنی وہ جو معطوف بحرف ہے وہ بھی متبوع کے ساتھ ساتھ مقصود بن نسبت ہوتا ہے. تو دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مقصود بن نسبت. مثلا میں نے آپ سے کہا جاءنی زید و عمر، تو زید ہے معطوف علی اور و حرف عطف، اور عمر ہے معطوف. تو یہاں صرف متبوع یعنی جو پہلے آیا صرف وہ مقصود نہیں، یا جو صرف بعد میں آیا یعنی تابع وہ بھی مقصود نہیں، بلکہ دونوں مقصود بھی نسبت ہیں. یعنی کہنے والا دونوں کی طرف آنے کی نسبت کرنا چاہتا ہے، وہ دونوں کے بارے میں بتلانا چاہتا ہے کہ دونوں آئے ہیں، زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے. تو زید جو پہلے آیا وہ ہوا معطوف علیہ، اور جو بعد میں یعنی عمر آیا وہ ہے معطوف. تو معطوف بحرف وہ ہے کہ جو اپنے متبوع سمیت مقصود بن نسبت ہوتا ہے، یعنی دونوں مقصود بن نسبت ہوتے ہیں. عطف بحرف بھائی، اور یہ عطف بمانے معطوف ہے. معطوف بحرف عطف کس معنی میں ہے؟ معطوف کے معنی میں. تو معطوف بحرف یعنی حرف کے ذریعے جو معطوف ہو. آگے ایک عطف بیان آ رہا ہے، وہ بھی معطوف ہے، لیکن وہ عطف بیان ہے، لیکن یہ عطف بحرف ہے، حرف کے ذریعے معطوف ہے بھائی. تو یہاں درمیان میں حرف عطف آئے گا، جبکہ آگے عطف بیان وہاں بھی عطف ہوگا، لیکن وہاں درمیان میں حرف عطف نہیں آئے گا. اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ عطف بحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں بھائی، عطف نسق. اور نسق کا معنی ہے ترتیب دینا، چونکہ یہ عطف بھی بعض مقامات پر ترتیب کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطف نسق. جیسے جاءنی زید فعمر ثم بکر، یہ فا بھی عطف کے لیے آتی ہے، ثم بھی عطف کے لیے آتا ہے، تو یہاں یہ ترتیب کا فائدہ دے رہے ہیں. جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، فعمر پھر عمر آیا، ثم بکر پھر بکر آیا. تو معلوم ہوا سب سے پہلے زید آیا، اس کے بعد پھر عمر آیا، اور اس کے بعد بکر آیا. تو یہ ترتیب کا فائدہ دیا یہاں پر فا اور ثم نے، تو اس لیے اس عطف بحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ حروف عاطفہ کا بڑا فائدہ ہے کہ یہ کلام کو مختصر کر دیتے ہیں. مثلا جاءنی زید و عمر، یہ کلام کس درجے میں ہے؟ گویا آپ نے کہا جاءنی زید و جاءنی عمر. تو جاءنی زید و جاءنی عمر، تو ہر ایک کے لیے علیحدہ جاء فعل ذکر کرنا پڑتا، لیکن حرف عطف نے کیا فائدہ دیا کہ دوبارہ فعل کو یا دوبارہ عامل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو یہ کلام مختصر ہو گیا، جاءنی زید وجاءنی عمر کے بجائے صرف جاءنی زید و عمر سے کام بن گیا، اور اس نے بھی وہی فائدہ دیا بھائی. اس کے بعد عطف بیان کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، اور انہوں نے بتلایا کہ عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے اور اپنے متبوع کی وضاحت کرتا ہے. اپنے متبوع کی وضاحت، یہاں انہوں نے قید لگائی کہ جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ صفت بھی اپنے متبوع کی وضاحت کرتی ہے. میں نے آپ کو بتلایا کہ صفت معرفہ کی بھی آتی ہے اور نکرہ کی بھی. معرفہ کے اندر جو صفت آئے وہ اپنے متبوع کی وضاحت کرتی ہے. مثلا زید ہے معرفہ، اور اس کی صفت میں العالم لاتا ہوں، جاءنی زید العالم. تو اس العالم نے زید کی وضاحت کر دی، اس کی توضیح کر دی. तौजीह का क्या माना कि जैद के अंदर आलिम होने का भी एहतमाल था और आलिम न होने का भी एहतमाल था। तो फिर जब अल आलिम आया तो इसने बतला दिया कि वो आलिम है और आलिम न होने के एहतमाल को इसने खत्म कर दिया। भाई तो सिफत क्या करती है, मारिफा के अंदर तौजीह का फायदा देती है और नकिरा के अंदर तख्सीस का फायदा देती है। नकिरा की सिफत लाएं तो वो मारिफा तो नहीं बनता, अलबत्ता उसमें तख्सीस पैदा हो जाती है और तख्सीस का माना है दीगर एहतमालात को कम करना। जैसे मैं सिर्फ गुलाम का लफ्ज बोलूं, फर्ज करो दुनिया में 1 करोड़ गुलाम हैं, तो ये गुलाम का लफ्ज उनमें से हर एक पर बोला जा सकता है कि ये भी गुलाम है, ये भी गुलाम है, ये भी गुलाम है, हर एक गुलाम पर बोला जा सकता है। तो इस गुलाम में 1 करोड़ इस्तेमालात हुए। फिर जब मैं इसकी सिफत ले आया गुलाम मुमिनुन, मोमिन गुलाम, अब फर्ज करो 1 करोड़ गुलामों में से सिर्फ 10 लाख मोमिन हैं, तो अब गुलाम मुमिनुन अब ये कितने पर सादिक आ रहा है, 10 लाख पर। पहले गुलाम का लफ्ज अकेला था, अकेला अभी भी आप लाएंगे तो वो 1 करोड़ पर सादिक आएगा, लेकिन जब आप सिफत ले आएंगे गुलाम मुमिनुन, अब काफिर गुलाम पर तो ये लफ्ज नहीं बोल सकते, तो सिर्फ कितने पर सादिक आएगा, 10 लाख पर। तो देखो एहतमालात कम हो गए, यानी उसमें तख्सीस पैदा हो गई। तो मारिफा के अंदर सिफत तौजीह का फायदा देती है यानी वजाहत का, यानी दूसरे एहतमाल को खत्म कर देती है, और नकिरा के अंदर सिफत तख्सीस का फायदा देती है। तो सिफत भी तौजीह का फायदा देती है और आत्फे बयान भी तौजीह यानी वजाहत का फायदा देता है। तो अगर सिर्फ यह तारीफ करते कि आत्फे बयान वो ताबिया है जो अपने मतबू की वजाहत करता है, तो सिफत भी इसमें आ जाती क्योंकि सिफत भी अपनी वजाहत करती है, तो लिहाजा कैद लगा दी कि सिफत के अलावा होना चाहिए, ये अथवे बयान सिफत के अलावा होना चाहिए। सिफत तो वो थी जो अब ऐसे माना पर दलालत करे जो मतबू में पाया जाए या मतबू के मुतालिक में पाया जाए, जबकि अथवे बयान में ऐसा नहीं होता, वो ऐसे माना पर दलालत नहीं करता जो मतबू में पाया जाए या मतबू के मुतालिक में पाया जाए। भाई तो इन्होंने बतलाया कि अथवे बयान वो ताबे है जो सिफत के अलावा हो और अपने मतबू को रोशन करे यानी उसकी वजाहत करे, जैसे अकसम बिल्लाही अबू हफ्सिन उमर। और इसमें मैंने आपको दो मजाहिब भी बतलाए थे, साहिब नहमीर ने यह बतलाया कि जो अथवे बयान होता है वो मातूफुन आले से ज्यादा मशहूर होना चाहिए, जैसे अबू हफ्सिन उमर। अबू हफ्स यह है कुनियत, भाई मैंने बताया था किसी नाम के शुरू में अब उम या इबन बिंत वगैरह जैसे लफ्ज आ जाए तो इसको कुनियत कहते हैं, और अरब में जो बड़े लोग होते थे वो अपनी कुनियत रखा करते थे। भाई जैसे मसलन जैद है, जैद का बेटा आमर है, तो जैद अपनी कुनियत रख लेता है अबू आमर, आमर का बाप, आमर का बाप। और या जैद की मां है वो अपनी कुनियत रख लेती है उम्मे जैद, उम्मे जैद जैद की मां। या जैद का बेटा है, जैद का बेटा है वो अपनी कुनियत रख लेता है इब्ने जैद, क्या रख लेता है, हां तो उसकी कुनियत उसे अपनी कुनियत रख लेता है, देखो इब्नु जैदीन जैद का बेटा, देखो शुरू में इबन का लफ्ज आ गया। या बिन्तु जैदीन जैद की बेटी, या उम्मु जैदीन जैद की मां, या अबू जैद जैद का बाप। तो ये मुख्तलिफ किस्म के, देखो सब के शुरू में अब उम वगैरह का लफ्ज आ रहा है, ये है कुनियत। भाई तो इन्होंने बतलाया कि अथवे बयान जो है वो मतबू के मुकाबले में ज्यादा मशहूर होना चाहिए, क्योंकि इसने वजाहत करनी है अपने मतबू की, जब ज्यादा मशहूर होगा तभी वजाहत करेगा ना। जैसे अकसम बिल्लाही अबू हफ्सिन उमर, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक उनका नाम है वो हर एक जानता है और एक उनकी कुनियत है अबू हफ्स, वो हर एक को मालूम नहीं। तो पहले शेर में जिक्र किया अबू हफ्स, अब अबू हफ्स से वजाहत नहीं हुई कि इसे कौन मुराद हैं, तो आगे उनका नाम जो ज्यादा मशहूर था वो जिक्र कर दिया कि अबू हफ्सिन उमर। इस उमर ने आकर वजाहत कर दी कि अबू हफ्स से कौन मुराद हैं, उमर मुराद हैं भाई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो दो मिसालें दी भाई मुसन्निफ ने यहां, एक में देखो अबू हफ्स कुनियत को पहले लाए और उमर जो नाम था उसको अथवे बयान बनाया क्योंकि नाम ज्यादा मशहूर था, और दूसरी मिसाल जा अनी जैदुन अबू आमरीन, इसमें जैद जो नाम है उसको मातूफुन आले बनाया, और अबू अमर जो है कुनियत उसको अत्फे बयान बनाया, क्योंकि यहां कुनियत ज्यादा मशहूर है। तो जो ज्यादा मशहूर हो, अगर नाम ज्यादा मशहूर हो तो नाम को फिर अत्फे बयान बनाएंगे, और अगर कुनियत ज्यादा मशहूर हो तो फिर कुनियत को अत्फे बयान बनाएंगे, यानी बाद में उसको लाएंगे, पहले दूसरे लफ्ज को लाएंगे। और जबकि मैंने बताया कि बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि अत्फे बयान का अपने मतबू से ज्यादा मशहूर होना जरूरी नहीं, हां दोनों से मिलकर तौज़ीह, दोनों से मिलकर वजाहत हासिल हो जाए तो यह काफी है, फिर वह अत्फे बयान बन सकता है। मैंने मिसाल से बात समझाई थी, जैसे आपके दो साथी हैं उनका नाम है जैद और एक का नाम है अब्दुलरहमान, तो इनमें से अगर मैं सिर्फ कहूं मेरे पास जैद आया था, देखो आपको पता नहीं चला कि कौन सा जैद आया है, और इनमें से अब्दुलरहमान की कुनियत भी अबू अमर है और एक जैद की कुनियत भी अबू अमर, तो अगर मैं सिर्फ अबू अमर कहूं फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं कौन सा अबू अमर आया, जैद आया या अब्दुलरहमान आया। लेकिन जब मैं नाम के साथ कुनियत भी मिला दूंगा, जाअनी जैदुन अबू अमरिन, मेरे पास वो जैद आया जिसकी कुनियत क्या है, अबू अमर, अब आपको पता चल गया कि कौन सा वाला जैद मुराद है और कौन सा वाला अबू अमर मुराद है। वो जैद जिसकी कुनियत क्या है, अबू अमर, और वो अबू अमर जिसका नाम क्या है, जैद, मालूम हुआ वो आपके पास आया है। तो दोनों के मिलने से वजाहत हासिल हो गई। तो साहिब किताब ने इस मजहब को तरजीह दी कि अत्फे बयान को वो मातूफुन आले से ज्यादा मशहूर होना चाहिए, जबकि बाज उलमा क्या फरमाते हैं, अत्फे बयान का ज्यादा मशहूर होना जरूरी नहीं, हां दोनों के मिलने से वजाहत हो जाती हो, पता चल जाता हो तो फिर उस लफ्ज को अत्फे बयान बना सकते हैं। आगे देखिए भाई, फसल दुवम दर बयान मुनसरिफ हो गैर मुनसरिफ, मुनसरिफ आन अस्त के हेच सबब अज असबाब मनासरफ दर ओ नबाशद, गैर मुनसरिफ आन अस्त, इसको आंस्त ना पढ़ना भाई, नून पर जबर पढ़ना, वगैर मुनसरिफ आनस्त के दो सबब अज असबाब मना सर्फ दर ओ बाशद, व असबाब मना सर्फ नुहस्त, अदलो वस्फो तानी सो मारिफा उजमाओ जमाओ तरकीबो वजन फेलो अलिफो नून मजीद तान। अब मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का बयान करने लगे हैं। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां वो एराब के एतबार से इसम की 16 किस्में आई थी, 16 किस्में, वहां गैर मुनसरिफ का बयान आया था और इन्होंने असबाब मना सर्फ भी आपको गिनवाए थे कि असबाब मना सर्फ 9 हैं भाई, ये 9 असबाब हर वक्त आपको याद होने चाहिए। वो 9 असबाब कौन कौन से हैं, अदल वसफ तानीस मारिफा उजमा जमा तरकीब वजन फेल और अलिफ नून जायदा तान, भाई अलिफ नून मजीदा तान कह लें या अलिफ नून जायदा तान कह लें, एक ही बात है। तो ये असबाब मना सर्फ हैं भाई, याद रखो इनमें से जो जमा है, जमा के अंदर जमा मुंतहल जुमुआ का सीगा जो है, जमा मुंतहल जुमुआ का सीगा, वो सबब बनता है गैर इंसिराफ का। हर जमा गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनती, किताब की जमा है कुतुब, तो कुतुब का वजन क्या, फुल, ये वजन सबब नहीं, ये कुतुब भी जमा है लेकिन ये गैर इंसिराफ का सबब नहीं है। इसी तरह कलम की जमा है अकलाम, ये अकलाम भी गैर इंसिराफ का सबब नहीं, जमा से मुराद है जमा मुंतहल जुमुआ, जमा मुंतहल जुमुआ का खास वजन है भाई, और वो ये कि अलिफ जमा के बाद दो हर्फ आ जाए या तीन हर्फ आ जाए या एक हर्फ आए लेकिन मुशद्दद हो, मुशद्दद हो, जैसे मस्जिद की जमा है मसाजिद, देखो मसाजिद ये जमा है किसकी, मस्जिद, और मसाजिद के दरमियान अलिफ है, मस्जिद में अलिफ था नहीं, तो ये जो अलिफ है ये अलिफ जमा वाला है, इसको अलिफ जमा कहते हैं कि जमा की वजह से लाना पड़ा, तो मस्जिद की जमा मसाजिद, और मसाजिद इसमें अलिफ जमाया और अलिफ जमा के बाद कितने हरूफ हैं, दो हरूफ हैं जीम और दाल, तो ये है जमा मुंतहल जुमुआ का वजन। या इसी तरह तीन हरूफ हों, जैसे मिसबाह भाई स्वाद के साथ, मिसबाहुन चराग को कहते हैं और मिसबाह की जमा है मसाबीह भाई, मिसबाह में स्वाद और बा के दरमियान तवज्जो है, मिसबाह स्वाद और बा के दरमियान कोई अलिफ है, हां स्वाद और बा के दरमियान कोई अलिफ है बा के बाद तो अलिफ है लेकिन बा से पहले अलिफ नहीं। लेकिन मसाबीह, यहां देखो साद और बा के दरमियान अलिफ आ गया, मालूम हुआ ये कौन सा अलिफ है, अलिफ जमा है, ये मुफरद में तो नहीं था, यहां आ गया है। तो मसाबीह में ये अलिफ अलिफ जमा है और इस अलिफ के बाद तीन हरूफ हैं बा या और हा, तो ये भी क्या है, जमा मुंतहल जुमों का वजन है। या अलिफ जमा के बाद एक हर्फ हो लेकिन लेकिन वो मुशद्दद होना चाहिए, और हर्फ मुशद्दद भी दरअसल दो हरूफ होते हैं, जैसे दाबतुन, दाबतुन की जमा आती है दवाबु, दाल वो अलिफ और बा मुशद्दद है, तो ये अलिफ जमा का है और बा मुशद्दद है, और बा मुशद्दद भी कितने हरूफ के दर्जे में है, दो, तो गोया दो हरूफ आ गए अलिफ जमा के बाद। तो हासिल कलाम ये कि असबाब मना सर्फ में जमा से मुराद कौन सा सीगा है, जमा मुंतहल जुमुअ, फिर दोहराओ कौन सा सीगा, जमा मुंतहल जुमुअ का सीगा है, और जमा मुंतहल जुमुअ का सीगा कौन सा होता है कि अलिफ जमा के बाद दो हर्फ आ जाएं या तीन हर्फ आ जाएं या एक हर्फ आए लेकिन वो मुशद्दद हो। तो और ये याद रखो ये गैर इंसिराफ का सबब बनेगा, ये वजन जिस लफ्ज में ये वजन आ जाएगा उसको गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे, और ये दो सबबों के कायम मकाम है। यहां अब दूसरा सबब देखने की जरूरत नहीं, जहां ये वजन आ जाए वो खुद ही दो सबबों के कायम मकाम है। तो मालूम हुआ मसाजिद इसमें ये वजन आ गया तो ये क्या है, गैर मुनसरिफ है, क्योंकि इसमें जमा मुंतहल जुमुआ का वजन आया और जमा मुंतहल जुमुआ का वजन दो सबबों के कायम मकाम है, यानी ये दो सबबों की तरह है। गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं, जिसमें दो असबाब मना सर्फ हो या एक सबब ऐसा हो जो दो के कायम मकाम। तो यहां ये मसाजिद ये जमा मुंतहल जुमुआ का वजन है और ये सबब दो सबबों के कायम मकाम है, लिहाजा ये सबब जब आ गया अब ये मसाजिद का लफ्ज गैर मुनसरिफ है, इसमें कोई दूसरा सबब तलाश करने की जरूरत नहीं। और गैर मुनसरिफ का हुक्म आप पढ़ चुके हैं कि उस पर कसरा भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती, कसरा भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती। मसलन जा अनी उमरु, ये उमर का लफ्ज गैर मुनसरिफ है और देखो इस पर तनवीन नहीं। जा अनी जैदुन, जैद को मैं जिक्र करूं तो उस पर तनवीन आती है, जा अनी जैदुन, जैद फाइल है ना और फाइल पर रफा आता है तो साथ तनवीन भी आएगी, जा अनी जैदुन, मेरे पास जैद आया। लेकिन जब यही लफ्ज उमर मैं इसको फाइल बनाऊं, जा अनी उमरु, अब तनवीन नहीं, उमरुन तनवीन नहीं आएगी क्योंकि उमर का लफ्ज क्या है, गैर मुनसरिफ, और गैर मुनसरिफ पर कसरा भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती। कसरा भी नहीं आता भाई, इस पर जर भी फतहा की सूरत में आता है, जा अनी उमरु ये फाइल है मरफू है, रई तो उमारा यह मनसूब है यह मफूल भी ही है, और मरर तो भी उमारा, देखो ये उमर पर बा जारा दाखिल है और बा जारा क्या करती है, जर देती है, तो इसने जर दिया उमर को, तो उमारा भी उमारा। अब आपसे कोई पूछे कि उमर का लफ्ज इसका एराब क्या है, आप क्या कहेंगे,
मजरूर
जी, मजरूर है भाई, जिस लफ्ज पर हर्फे जर दाखिल हो जाए आंखें बंद करके बता दिया करें कि यह मजरूर है क्योंकि हर्फे जर जर देता है। हां फिर जर की सूरतें मुख्तलिफ हैं, कभी जर लफजन आता है, कभी जर तकदीरन आता है और कभी जर महल्लन आता है। जर लफजन आएगा मररतु बिज़ैदिन, देखो जैद पर आपको जर तलफुज में मालूम हो रहा है, नजर आ रहा है, और कभी जर तकदीरन आता है मररतु बिमूसा, ये मूसा क्या है, इसके आखिर में तौलीफ मकसूरा है, इसका इराब तीनों हालतों में तकदीरी होता है, लिहाजा इस पर जर तकदीरन होगा भाई, तकदीरन होगा। तो मरर तो बी मूसा, ये मूसा पर जर क्या है, तकदीरन, तो जर कभी कभार लफजन आता है और कभी तकदीरन, और अगर मबनी हो फिर जर कैसे आता है, महलन आता है। मरर तो बी हाजा, ये हाजा क्या है, इसमें इशारा है, मबनी है, और मबनी पर एराब कैसे आता है, महल्लन, तो मरर तो बिहाजा, ये हाजा क्या होगा, मजरूर महल्लन होगा। बात समझ में आ गई, मरर तो बिज़ैदिन, ये जैद क्या है, मजरूर है लफजन, फिर दोहराएं, मररतु बि ज़ैदिन, ये ज़ैद क्या है? मजरूर लफ्जन। मररतु बि मूसा, ये मूसा मजरूर है तकदीरन। और मररतु बि हाजा, ये हाजा मजरूर है महलन। भाई अब मुझे बताइए भाई, ये मैंने तफसील दोबारा बयान की, जाअनी उमरु, ये उमर क्या है? मरफू। इस पर तनवीन क्यों नहीं आई? क्योंकि गैर मुनसरिफ है। रए तो उमारा, इस पर तनवीन क्यों नहीं आई? गैर मुनसरिफ है। और मरर तो बि उमारा जी, इस उमारा का इस पर बा जारा दाखिल है, इस पर इसका एराब बतलाइए मुझे। मजरूर है, कौन सा मजरूर है ये जी? हां शाबाशी, मजरूर लफ्जन है। आप ये ना कहें कि जर तो नजर नहीं आ रहा, नहीं भाई, ये इस पर जो फतहा आ रहा है ये जर ही है। इसका जर आता ही किस शक्ल में है? फतहा की सूरत में। और आप उस फतहा पर तलफुज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मरार तो बेउमारा, देखो मैं फतहा पर तलफुज कर रहा हूं, तो इसका जर आता ही किस शक्ल में है? फतहा की सूरत में आता है, तो ये मजरूर लफजन है। तो गैर मुनसरिफ का हुक्म क्या हुआ? इस पर कसरा भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती। बात चल रही थी जमा मुंतहल जुम्मा की। जमा मुंतहल जुम्मा का सीगा ये कितने सबबों के कायम मकाम? दो सबबों के। लिहाजा मस्जिद की जमा मसाजिद आई। कौन सा सीगा है ये? जमा मुंतहल जुम्मा का। लिहाजा ये गैर मुनसरिफ होगा, क्योंकि जमा मुंतहल जुम्मा दो सबबों के कायम मकाम है। लिहाजा अब इस पर तनवीन नहीं आएगी। मसाजिदु, मसाजिदुन तनवीन के साथ आप नहीं कह सकते। इसी तरह मसाबीहु, यह भी गैर मुनसरिफ है, इस पर भी तनवीन नहीं आएगी। और दवाबु, देखो इस पर भी तनवीन नहीं आएगी। और नीज इनका जर भी किस सूरत में आएगा? फतहा की सूरत में। मसलन मसाजिद, अगर ये मजरूर होता तो कैसे पढ़ते? मसाजिदा, मसाजिदा, ये इसका जर है। इसका जर आता ही किस सूरत में है? फतहा की सूरत में। तो ये कौन सा मजरूर हुआ? मजरूर, क्योंकि इसके जर पर हम बाकायदा तलफुज कर रहे हैं। इसी तरह मसाबीह, हालत रफी में, हालत नस्बी में कैसे कहेंगे? मसाबीहा। और हालत जरी में कैसे कहेंगे? मसाबीहा। देखो जर जो है वो फतहा की सूरत में ही आएगा। हासिल कलाम क्या हुआ? कि जमा मुंतहल जुमो का सीगा दो सबबों के कायम मकाम है, और ये जिस लफ्ज में आ जाए वो लफ्ज गैर मुनसरिफ बन जाता है, और गैर मुनसरिफ पर कसरा भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती। इसी तरह दो और सबब हैं, वो भी दो दो के कायम मकाम हैं। एक तानीस ब अलिफ मकसूरा और एक तानीस ब अलिफ ममदूदा। आपने पढ़ा था कि मुअन्नस किसे कहते हैं? जिसमें कोई तानीस वाली अलामत हो। और तानीस की अलामतें चार हैं। एक क्या है? गोलता। जैसे तलहतो, तलहतो इसमें देखो गोलता है भाई, गोलता। और ये तानीस की अलामत, ये नाम तो बेशक मुजक्कर का है लेकिन तानीस वाली अलामत गोलता इस लफ्ज में मौजूद है। और दूसरी अलामत क्या थी? अलिफे मकसूरा। जैसे हुबला, किसी इसम के आखिर में तानीस की वजह से जो अलिफ मिला दिया जाए उसको क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा। और एक दूसरा है अलिफ ममदूदा, जैसे हमराउ। अहमर का माना होता है सुर्ख, और इसी की मुअन्नस क्या? हमराउ। तो हमराउ ये भी क्या है? मुअन्नस। और इसमें तानीस की कौन सी अलामत है? अलिफ ममदूदा। हुबला भी मुअन्नस, वो उसमें तानीस की कौन सी अलामत है? अलिफ मकसूरा। तो ये जो तानीस की दो अलामतें हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, ये भी दो सबबों के कायम मकाम हैं। अलिफ मकसूरा तानीस वाला जिस लफ्ज में आ जाए तो ये दो सबबों के कायम मकाम है या सबब, लिहाजा वो लफ्ज गैर मुनसरिफ होगा। गैर मुनसरिफ, दूसरा सबब तलाश करने की जरूरत नहीं। इसी तरह ये तानीस वाला अलिफ ममदूदा जिस लफ्ज के अंदर आ जाए वो भी गैर मुनसरिफ होगा, वहां दूसरा कोई सबब तलाश करने की जरूरत नहीं है। तो दो सबबों के कायम मकाम गोया तीन असबाब मना सर्फ हैं। कौन कौन से? एक जमा मुंतहल जुमोह, और एक तानीस बालिफ मकसूरा, और एक तानीस बालिफ ममदूदा। ये तीन दो दो सबबों के कायम मकाम हैं। तो ये जिनमें आ जाएं वो गैर मुनसरिफ होंगे, वहां दूसरा सबब तलाश करने की जरूरत नहीं। जबकि बाकी असबाब वो अकेले आए तो लफ्ज को गैर मुनसरिफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक सबब की वजह से लफ्ज गैर मुनसरिफ नहीं बनता, बल्कि कम अज कम कितने सबब चाहिए? दो सबब। तवज्जो है, एक सबब गैर इंसिराफ वाला किसी लफ्ज में आ जाए तो वह गैर मुनसरिफ नहीं बनेगा, बल्कि कम अज कम दो सबब हों। तो गैर मुनसरिफ वो है जिसमें गैर इंसिराफ वाले दो सबब आ जाएं, या कोई एक ऐसा सबब आ जाए जो दो के कायम मकाम है। मालूम हुआ जिस लफ्ज में गैर इंसिराफ का कोई एक भी सबब ना हो वो भी मुनसरिफ। तवज्जो है, दो सबब होंगे फिर तो क्या बनेगा? गैर मुनसरिफ। अगर दो सबब नहीं है किसी लफ्ज में, यानी एक भी नहीं है, तो वो क्या होगा? वो जाहिर सी बात है मुनसरिफ होगा। और अगर एक हो फिर भी मुनसरिफ। तवज्जो नहीं, मेरा ख्याल है। गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं? जिसमें दो सबब हो गैर इंसिराफ वाले, या कोई एक हो जो दो के कायम मकाम हो, और जो ऐसा ना हो वो मुनसरिफ होगा। जो ऐसा ना हो वो, लिहाजा एक लफ्ज है उसमें गैर इंसिराफ वाला एक भी सबब नहीं है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको मुनसरिफ कहेंगे। जब गैर मुनसरिफ नहीं है तो दूसरी बात क्या रह गई? वो क्या होगा? मुनसरिफ होगा, मुनसरिफ होगा। और अगर एक सबब पाया गया तो भी वो क्या होगा? मुनसरिफ, क्योंकि गैर मुनसरिफ के लिए दो सबब होना जरूरी। तो लिहाजा कोई लफ्ज ऐसा है जिसमें गैर इंसिराफ का एक भी सबब नहीं है, आप उसको क्या कहेंगे? मुनसरिफ। या सबब तो है लेकिन सिर्फ एक है, दो सबब नहीं है, उसको भी आप क्या कहेंगे? मुनसरिफ कहेंगे। बात समझ में आ गई? इतनी लंबी तकरीर मैंने की, दरअसल समझाना यह चाहता था कि साहिब किताब ने जो तकरीर की है, मालूम होता है इसमें कोई किताबत की गलती हुई है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा देखो जरा किताब पर। कहते हैं फसल दुवम दर बयान मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, दूसरी फसल है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के बयान में, यानी इसमें मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का बयान होगा। अब मुनसरिफ की पहले तारीफ कर रहे हैं, मुनसरिफ आनस, मुनसरिफ वो है कि हेच सबब अज असबाब मना सर्फ दरो न बाशद, कि हेच सबब के कोई सबब अज असबाब मना सर्फ, मना सर्फ के असबाब में से, कि हेज सबब अज असबाब मना सर्फ, मना सर्फ के असबाब में से कोई सबब दरो न बाशद, वो उसके अंदर न हो। तवज्जो है, मुनसरिफ किसे कहते हैं? जिसमें गैर इंसिराफ के असबाब में से कोई सबब ना हो। हालांकि अभी मैंने बताया कि जिसमें कोई सबब ना हो वो भी मुनसरिफ, जिसमें एक सबब हो वो भी मुनसरिफ, लेकिन ये तो क्या कह रहे हैं कि जिसमें कोई सबब ना हो वो मुनसरिफ है। तो जिसमें एक सबब हो वो भी तो मुनसरिफ होता है। एतराज समझ में आ रहा है? मालूम हुआ ये कि किताबत की गलती हुई है, कि ये पहले जमाने में किताबें तलबा हाथ से लिखते थे, तो किसी ने किताबत करते हुए ये जो हेच का लफ्ज आया ना, यहां दो का लफ्ज होना चाहिए। दो यूं तारीफ करें, मुनसरिफ आनस्त के दो सबब अज असबाब मना सर्फ दरो न बाशद, के मुनसरिफ वो है कि जिसके अंदर असबाब मना सर्फ के दो सबब न हो। तवज्जो है, हेज की जगह क्या होना चाहिए? दो, दो, दो। तो ये हेज को काटना नहीं है, काटना नहीं है, बस इसके ऊपर निशान हल्का सा लगाकर किनारे पर दो लिखें। भाई खराबी समझ में आ गई? इन्होंने क्या कहा कि मुनसरिफ किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी सबब ना हो। हालांकि जिसमें एक सबब हो वो भी क्या होता है? मुनसरिफ होता है, वो दाखिल नहीं हो रहा था। तो लिहाजा हेज के लफ्ज के बजाय अगर क्या हो? दो का लफ्ज हो, तो फिर बात ठीक बन जाती है। मालूम हुआ ये किसी लिखने वाले से गलती हुई है, और वो जैसे गलती एक दफा होती थी फिर वो चलती रहती थी, ये नहीं कि उसको कोई ठीक कर लेता था। वजह यह कि अगर हर आदमी कहे भाई ये भी गलती लग रही है इसको ठीक करो, दूसरा कहेगा ये गलती लग रही है इसको भी ठीक करो, चाहे खुद गलती में मुबतला हो लेकिन किताब का तो हुलिया ही बदल जाएगा भाई कुछ अरसे में ही। लिहाजा जिस तरह किताबें नकल होती चली आई, ये अमानत के दर्जे में हैं, उसको उसी तरह अगली नस्लों को मुंतकिल किया जाता है। अलबत्ता किनारे पर या हाशिए पर उलमा फिर लिख देते हैं कि यहां ये लफ्ज जुड़ता नहीं है, मालूम हुआ किसी लिखने वाले से गलती हुई है। तो मुनसरिफ किसे कहते हैं? जिसके अंदर दो असबाब मना सर्फ न हो। जब दो नहीं है तो चाहे एक हो चाहे एक भी ना हो, दोनों क्या हो गए? मुनसरिफ हो गए। बात समझ में आ गई। देखिए भाई, कहते हैं मुनसरिफ आनस्त, मुनसरिफ वो है कि दो सबब अज असबाब मना सर्फ दरो न बाशद, कि दो सबब असबाब मना सर्फ में से दरो न बाशद उसमें न हो। और एक सबब हो दो के कायम मकाम, एक सबब उसको जिक्र नहीं किया क्योंकि वो एक भी कितने के कायम मकाम है,
दो
के कायम मकाम है, तो हकीकत में तो दो नहीं लेकिन हुक्म के एतबार से वो भी क्या है,
दो
ही है, तो इसलिए उनको दो का जब जिक्र कर दिया तो उसको अलहदा जिक्र नहीं किया। वह गैर मुनसरिफ आनस्त, और गैर मुनसरिफ वो है कि दो सबब अज असबाब मना सर्फ दरोबाशद, के दो सबब अज असबाब मना सर्फ के मना सर्फ के असबाब में से दो सबब दरोबाशद उसमें हो। वह असबाब मना सर्फ नो हस्त, और असबाब मना सर्फ नौ हैं, अदलो वस्फो तानीसो मारिफा उजमा जमाओ तरकीबो वजने फेल अलिफन उन मजीदतान। ये असबाब मना सर्फ इन्होंने आपको बतलाया कि नौ है भाई, अदल वसफ तानीस मारिफा उजमा जमा तरकीब वजने फेल और अलिफ नून मजीदतान। इन पर नजर रखें, एक एक को मैं बयान करता हूं भाई। आदल पहला सबब है, आदल आदल भाई मुख्तसर मुख्तसर मैं बयान करता हूं, तफसील नहीं बयान करूंगा, तफसील अगली किताबों में आ जाएगी, मुख्तसरन थोड़ा थोड़ा तारुफ इनका। आदल इसको कहते हैं, आदल का माना फेरना, फेरना बदलना, लफ्ज को एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ बदलना, लफ्ज को एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ फेरना, इसको क्या कहते हैं, आदल कहते हैं, आदल। और ये याद रखो, ये कोई जाब्ता और कानून नहीं होता, खिलाफ कानून क्या कर लिया जाता है, एक लफ्ज को दूसरी सूरत की तरफ बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। फिर याद रखो, ये जो बदलना है ये दो तरह पर है, एक को अदले तहकीकी कहते हैं, एक को अदले तकदीरी। क्या कहते हैं? अदल का क्या माना? फेरना और बदलना, यानी एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ लफ्ज को फेर देना, बदल देना। और ये दो किस्म पर है, एक अदले तहकीकी और एक अदले तकदीरी। अदले तहकीकी ये है कि एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज की तरफ फेरा गया है और हमारे पास दलील भी मौजूद है, हमारे पास दलील भी कोई मौजूद हो जो बतलाए कि इस लफ्ज की असल सूरत यह थी और इसको फेरा गया है इस शक्ल की तरफ। और अदले तकदीरी वो है, तकदीर कदर युकदीर, तकदीर का माना फर्ज कर लेना, जहां अदल को फर्ज कर लिया गया, मान लिया गया, हमारे पास दलील कोई नहीं मौजूद, नहवी हजरात के पास कोई दलील मौजूद नहीं है कि पहले सूरत यह थी और फिर फेर कर यह बना दी गई, लेकिन बस वो मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। तो अदल तहकीकी किसे कहते हैं? जिसमें अदल पर कोई दलील मौजूद हो। और अदल तकदीरी किसे कहते हैं? जिसमें अदल पर कोई दलील मौजूद न हो। देखो मिसालों से और वजाहत होगी, जैसे उमर, अभी मैंने बतलाया उमर का लफ्ज क्या है, गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, इसमें दो सबब क्या, एक अदल है और एक आलम है, नाम है, मारिफा है, मारिफा है, तो दो सबब क्या हो गए भाई, मारिफा की कई किस्में हैं ना, उनमें से सिर्फ आलम जो नाम है, जो कि जैद अमर बकरी जो नाम है, यह सबब बनता है गैर इंसिराफ का। तो उमर में कौन से दो सबब, एक तो यह नाम है कि आलम है, दूसरा सबब क्या, आदल है। और याद रखो यह अदले तकदीरी है, अदले तकदीरी का क्या माना, फर्ज कर लें इसमें आदल है, फर्ज कर लें आदल है। और ये असल में था आमिर, आमिरुन, और फिर बदल दिया गया, क्या बना दिया गया, उमर। तो देखो पहले आमिरुन वजन था, अब उमर बन गया, बिल्कुल सूरत बदल गई। तो देखो इसको कहते हैं अदल, एक सूरत से सीगे को फेर दिया गया दूसरे दूसरी सूरत की तरफ। और क्या दलील है, दलील कोई मौजूद नहीं, दलील कोई मौजूद नहीं, कोई दलील मौजूद नहीं। तो यह अदल तकदीरी है भाई, जब दलील कोई मौजूद नहीं तो फिर कैसे मान लिया कि हां पहले आमिर, पहले यह आमिर था और फिर क्या बन गया, उमर। तो जवाब यह, नहवी हजरात को ने कानून बना दिया कि गैर मुनसरिफ वो ही लफ्ज होगा जिसमें दो सबब पाए जाएं, या एक ऐसा सबब हो जो दो के कायम मकाम हो। जाब्ता क्या बनाया, गैर मुनसरिफ कौन सा लफ्ज होगा, जिसमें दो सबब हो या कोई एक सबब हो जो दो के कायम मकाम हो। उन्होंने यह जाब्ता बनाया भाई कितनी मेहनत की होगी, कितना सोचा होगा, और फिर यह एक जाब्ता और कानून बना दिया और यह असबाब भी जमा किए और फिर यह कानून अरबी के अल्फाज पर देखना शुरू किया। यह कानून अपनी तरफ से नहीं कि हम दो सबब हैं अब इसको आप क्या पढ़ो गैर मुनसरिफ पढ़ो, नहीं नहीं, असल सुनना अरब से ही है कि अरब किस लफ्ज को गैर मुनसरिफ के तौर पर पढ़ते हैं यानी कसरा और तनवीन नहीं लाते और किस पर वो कसरा और तनवीन लाते हैं। चुनांचे पूरी अरबी जुबान में गौर किया, बात समझ में आ रही है। ये कवानीन किसके लिए बना रहे थे? अरबी जुबान के लिए, अरबी जुबान के लिए, और ये नहीं कि ये कानून बना दिए अब जुबान को तब्दील करो इन कानूनों के मुताबिक पढ़ो, नहीं नहीं नहीं, जुबान उसी तरह है उसके लिए कानून ऐसा बना दो कि वो जाबते के तहत आ जाए। चुनांचे उन्होंने कानून बनाया कि ये बाज लफ्जों को अरब गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं, उस पर कसरा भी नहीं पढ़ते और तनवीन भी। उन्होंने गौर किया ये क्यों है, इसकी वजह क्या है। आखिर गौर करते 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 उन्होंने ये नौ असबाब सर्फ जमा किए और कहा कि ये नौ असबाब सर्फ हैं, इनमें से जो दो या इनमें से कोई एक जो दो के कायम मकाम है जब वो किसी लफ्ज में आ जाए तो अरब से हमने सुना है वो उस लफ्ज को गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं। चुनांचे उन्होंने पूरी अरबी जुबान के अल्फाज देखना शुरू किए। हर हर जगह पर ये कानून दुरुस्त बनता जा रहा है भाई, जहां भी अरबों ने किसी लफ्ज को गैर मुनसरिफ पढ़ा है उसमें दो सबब हो गए, कभी कोई दो मिलते हैं, कभी दूसरे दो मिलते हैं, कभी और दो मिलते हैं, लेकिन होते दो सबब जरूर हैं। और जिस लफ्ज में दो सबब होते हैं अरब उसको हमेशा क्या पढ़ते हैं? गैर मुनसरिफ। अरबों को खुद नहीं पता कि इसमें दो सबब हैं या नहीं, उनकी तो जुबान है वो बोलते ही इसी तरह है, लेकिन बाज लफ्जों पर वो कसरा और तनवीन नहीं पढ़ते और बाजों पर कसरा और तनवीन पढ़ते हैं। फिर नहवियों ने जिस पर कसरा और तनवीन नहीं पढ़ते उसका नाम गैर मुनसरिफ रख दिया। अरबों के सामने गैर मुनसरिफ कहोगे उनको कुछ पता नहीं गैर मुनसरिफ क्या चीज है, लेकिन उनकी आदत है, उनकी जुबान है, वो कुछ लफ्जों पर कसरा और तनवीन पढ़ते हैं और कुछ पर कसरा और तनवीन, जिन पर कसरा और तनवीन नहीं पढ़ते नहवियों ने उसका नाम गैर मुनसरिफ रखा। और फिर गौर किया कि क्यों नहीं पढ़ते कसरा और तनवीन, तो उन्होंने ये असबाब जमा किए मुख्तलिफ लफ्जों में गौर करते करते, ये नौ सबब उन्होंने जमा किए और फिर उसके बाद मुख्तलिफ अरबी के अल्फाज देखना शुरू किए। देखा बेहतरीन कानून बन गया है, सारी अरबी के अल्फाज जिस जिसको अरब गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं जब नहवी उसमें गौर करते तो दो सबब मिल जाते, फिर दूसरा लफ्ज लाए इसको भी अरब गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं कसरा और तनवीन इस पर नहीं पढ़ते उसमें गौर करते तो उसमें भी दो सबब मिल जाते। लेकिन बाज लफ्ज ऐसे मिले कि जिनमें एक सबब था और अरब फिर भी उसको क्या पढ़ रहे हैं गैर मुनसरिफ, तवज्जो है, जैसे उमर का लफ्ज, उमर के लफ्ज को अरब गैर मुनसरिफ पढ़ते हैं, कभी भी इस पर कसरा भी नहीं पढ़ते और तनवीन भी नहीं पढ़ते। नहवियों ने बहुत गौर किया लेकिन कोई दूसरा सबब मिल ही नहीं रहा, एक आलम तो है इसके अंदर दूसरा सबब नहीं मिल रहा, तो फिर अपने कानून को बचाने के लिए उन्होंने क्या कहा, इसमें अदल को फर्ज कर लो। इसमें क्या हुआ है? अदल हुआ है, और तो यह है अदल तकदीरी, तो कहते हैं फर्ज कर लो। यह उमर पहले क्या था? आमिर था, यह खुद ही फर्ज कर लिया, ये नहीं अरबी में ऐसा था, नहीं कि उमर पहले क्या था? आमिर, फिर इसकी सूरत बदलकर क्या बना दी? उमर, तो इसमें अदल है। अब देखो कानून बच गया, दो सबब आ गए, एक आलम दूसरा अदल, और अदल कौन सा? तकदीरी है, और अदल तकदीरी किसे कहते हैं? फर्ज कर लिया, नहीं जिसकी हमारे पास कोई दलील मौजूद नहीं, और क्यों फर्ज किया? अपने कानून को बचाने के लिए। कानून क्या बनाया था कि कोई लफ्ज गैर मुनसरिफ अरबों ने पढ़ा है उसमें दो सबबों में से कोई ना कोई दो सबब होंगे या एक ऐसा सबब होगा जो दो के कायम मकाम होगा, तो चुनांचे उसमें अदल को फर्ज कर लिया और ऐसा खूबसूरत कानून बन गया। अब आप पूरी अरबी उठाकर देख लें, आप देखेंगे जो भी लफ्ज अरब गैर मुनसरिफ के तौर पर पढ़ते हैं यानी उस पर कसरा और तनवीन नहीं पढ़ते तो वहां गैर इंसराफ के कोई से दो सबब मिलेंगे या कोई एक सबब मिलेगा जो दो के कायम मकाम होगा। बात समझ में आ गई? तो ये उमर का लफ्ज, इसमें एक सबब क्या? आलम, दूसरा सबब अदल, और अदल की कोई दलील है नहीं, मालूम हुआ ये कौन सा अदल है? अदल तकदीरी है, और एक अदल तहकीकी है भाई। अदल तहकीकी वो है जिसकी हमारे पास दलील मौजूद हो, जैसे सुलासु और मसलसु, सुलासु का माना है तीन तीन, मसलसु का माना भी है तीन तीन, ये सलासा से बने हैं। मादा क्या है? सलासा। तो सुलासु इसका माना क्या?
तीन।
दो दफा बोलें तीन तीन, एक नहीं। वैसे तो सलासा का क्या माना? तीन, लेकिन सुलासु का माना है तीन तीन, दो दफा तीन बोलना पड़ता है। मसलसु का माना भी है तीन तीन, दो दफा तीन बोलना पड़ता है। हालांकि एक लफ्ज का एक माना होता है या दो माना होते हैं? एक माना। सलासा का क्या माना? तीन। अरबा का क्या माना? चार। लेकिन सुलासु और मसलसु में आप तीन तीन दो दफा बोल रहे हैं, तो ये दलील है। मालूम हुआ ये पहले दो लफ्ज थे। क्या थे? एक लफ्ज हो तो उसका एक माना होता है, लेकिन आप तीन तीन दो दफा बोल रहे हैं, मालूम हुआ दो माना है एक ही लफ्ज के, और एक ही लफ्ज के दो माना तो नहीं होते। मालूम हुआ ये पहले लफ्ज भी दो थे। मालूम हुआ ये सुलासु और मसलसु, या सिर्फ एक पहले बोल लें, सुलासु पहले सलासतुन सलासतुन था, सलासतुन सलासतुन, तर्जमा करें देखा, अब दो माना आ गए, दो लफ्ज हैं तो माना भी कितने हैं? दो। फिर इस सलासतुन सलासतुन को नई सूरत दे दी और सुलासु बोल दिया, और एक और सूरत दे दी मसलसु बोल दिया। तो सुलासु का माना भी तीन तीन और मसलसु का माना भी तीन तीन, और ये असल में क्या थे? सलासतुन सलासतुन थे। और क्या दलील है आपके पास? दलील यह है कि इसका माना दो दफा है। माना दो दफा तभी होता है जब लफ्ज क्या हो? दो दफा हो। मालूम हुआ ये भी क्या था? पहले दो लफ्ज थे भाई, सलासतुन थे। तो बात समझ में आ गई। तो ये एक से लेकर दस तक आते हैं इसी तरह भाई। तो ये इसी तरह है, सुलासु रुबाउ खुमासु सुदासु, इसी तरह। तो अदल तहकीकी किसे कहते हैं? जिसमें हमारे पास लफ्ज को एक सूरत से दूसरी तरफ फेरने की कोई दलील मौजूद हो। और अदल तकदीरी किसे कहते हैं? जिसमें लफ्ज को एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ बदलने की हमारे पास कोई दलील मौजूद न हो। तो अदल गुजर गया। वसफ, वसफ का माना है सिफत भाई। वसफ का क्या माना? सिफत। यह सिफत जो होती है यह भी गैर इंसिराफ का सबब बनती है। जैसे अहमर, अहमर, अहमर क्या है? सुरख। और सुरख सिफत होती है, कोई चीज सुरख है, कोई सबज है, कोई नीली है, तो यह सबब बनेगी गैर इंसिराफ का। तानीस भाई, तानीस भी क्या है? गैर इंसिराफ का सबब बनेगी। कोई लफ्ज अगर मुअन्नस हो तो यह एक सबब शुमार होगा। जैसे तलहतु, तलहतु एक तो अलम है, नाम है, और दूसरा तानीस है, तो यह गैर मुनसरिफ होगा। लिहाजा तलहतुन तनवीन के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? तलहतु, तलहतु कसरा भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगी। ये तो तानीस बित्ता है। इसी तरह तानीस मानवी है। तानीस मानवी के माना के एतबार से मुअन्नस हो, किसी मुअन्नस का नाम वगैरह हो, तानीस मानवी। तो तानीस के अंदर तानीस बित्ता, यह भी गैर इंसिराफ का सबब। और एक तानीस ब अलिफ मकसूरा है, वो दो सबबों के कायम मकाम। और इसी तरह तानीस ब अलिफ ममदूदा है, वो भी दो सबबों के कायम मकाम है। उसके बाद मारिफा आया। मारिफा की आपने सात किस्में पढ़ी थी भाई, सात किस्में। नंबर एक तरतीब से जमीरें, तमाम जमीरें। नंबर दो आलम। नंबर तीन अस्मा इशारा। नंबर चार अस्मा मौसूला। नंबर पांच मारिफा ब निदा। नंबर छह मारिफा ब अलिफ लाम। और नंबर सात जो इनमें से किसी एक की तरफ मुजाफ हो भाई। फिर दोहराएं, मारिफा की कितनी किस्में? सात। नंबर एक तमाम जमीरें, नंबर दो आलम, नंबर तीन अस्मा इशारा, नंबर चार अस्मा मौसूला, नंबर पांच मारिफा ब निदा, नंबर छह मारिफा ब अलिफ लाम, नंबर सात इनमें से किसी एक की तरफ जो मुजाफ हो भाई। तो ये सात किस्में हैं मारिफा की, और इनमें से सिर्फ जो अलम है, अलम, वो गैर इंसिराफ का सबब बनता है। बाकी किस्में गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनती। तो मारिफा से यहां क्या मुराद है? अलम मुराद है। वह उजमा, उजमा कहते हैं अजमी जुबान का लफ्ज हो, यानी गैर अरब जुबान का। उजमा का क्या माना? गैर अरबी लफ्ज हो, अरबी जुबान में आ गया है लेकिन यह अरबी जुबान का लफ्ज नहीं है। जैसे आजकल आप भी देखते हैं उर्दू के अंदर अंग्रेजी के या और जुबानों के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल होते हैं, तो इसी तरह अरबी में अगर गैर अरबी लफ्ज आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? कि यह अजमी लफ्ज है, अजमी। तो उजमा कहते हैं गैर अरबी लफ्ज और अरबी जुबान में आ जाए। जमा, अगला सबब है जमा। जमा में मैंने बताया कौन सा सीगा सबब बनेगा, जमा मुंतहल जुमा। और अगला सबब जो है वो है तरकीब। भाई तरकीब देखो, अगर आपको याद हो नहमीर के बिल्कुल आगाज में इन्होंने बतलाया था कि मुरक्कब दो किस्म पर है, एक मुरक्कब मुफीद और एक मुरक्कब गैर मुफीद। तो वहां उन्होंने बयान किया था कि मुरक्कब गैर मुफीद तीन किस्म पर है, एक मुरक्कब इजाफी है, एक मुरक्कब बिनाई है और एक मुरक्कब मना सर्फ है। कितनी किस्में? तीन किस्में। एक मुरक्कब इजाफी जो मुजाफ और मुजाफिले से मिलकर बने, एक मुरक्कब बिनाई जैसे अहादा आशारा, और यहां पर ये असल में था अहादुन व आशारुन, तो यहां वाओ था, वो वाओ जो है उसको हजफ कर दिया और इन दोनों लफ्जों को मिलाकर जोड़ दिया और ये मबनी बन गया सारा आहादा आशारा। इसको इसी तरह पढ़ना है, इस पर कोई इसमें आगे कोई तब्दीली नहीं आएगी भाई। और तीसरी किस्म मुरक्कब की थी मुरक्कब मनासर्फ। मुरक्कब मनासर्फ वो था जहां दो लफ्जों को जोड़कर एक लफ्ज बना लेते हैं और उसको गैर मुनसरिफ की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाला बक्का। ये बाल एक बुत का नाम था जिसकी लोग इबादत किया करते थे, और बक्कुन बादशाह का नाम था जिसने एक शहर बसाया, तो उस शहर का नाम ही उस बुत और बादशाह के नाम को मिलाकर बाला बक्का रख दिया गया। और बाला बक्का अब इसको सारे को जोड़कर एक लफ्ज बना दिया, तो इसके आखिर में जब अब एराब पढ़ेंगे तो वो गैर मुनसरिफ वाला पढ़ेंगे भाई, क्योंकि एक आलम हो गया, नाम है शहर का, नाम है आलम है, और दूसरा ये मुरक्कब मना सर्फ है, तो यहां तरकीब आ गई। तरकीब यानी दो लफ्जों को जोड़ा गया है, तो एक आलम और एक तरकीब, ये दो चीजें इसमें जमा हो गई। तो हालत रफी में कहेंगे बाला बक्कू, देखो तनवीन नहीं है भाई, गैर मुनसरिफ है। और हालत नस्बी में कहेंगे बाला बक्का, और हालत जरी में भी कहेंगे बाला बक्का। तो बाला बक्का हालत जरी में, ये जो इस पर फतहा आ रहा है ये जर ही है भाई, इसके गैर मुनसरिफ का जर की सूरत में आता है, फतहा की सूरत में आता है। तो ये है तरकीब। दे देखा, एक तो बाला बक्का में दो सबब क्या हैं, एक आलम है और दूसरा तरकीब है, दो लफ्जों को जोड़कर एक बनाया गया है भाई। और अगला सबब है वजन फेल। भाई वजन फेल यानी फेल वाला वजन हो और इसम के अंदर आ जाए तो ये भी सबब बनेगा गैर इंसिराफ का। तो जैसे जुरीबा, किसी का नाम ही मसलन जुरीबा रख दिया गया। अब देखो, एक तो ये आलम बन गया और दूसरा जुरीबा फुइला फेल का वजन आ गया, तो ये लफ्ज क्या बन जाएगा, गैर मुनसरिफ होगा भाई। वह अलिफ नून मजीदतान, अलिफ नून मजीदतान यानी अलिफ और नून हो और जायद हो, हुरूफ असली ना हो। देखो मजीदतान यानी जायदतान, ये दोनों क्या हो, जायद हो, हुरूफ असली ना हो। अगर हुरूफ असली हैं अलिफ और नून फिर वो गैर इंसिराफ का सबब नहीं बनेंगे, बल्कि क्या जरूरी कि दोनों जायद हो, तो फिर ये गैर इंसिराफ का सबब बनेंगे। जैसे उस्मान भाई, अब ये नाम है, एक आलमियत है और एक अलिफ नून इसके आखिर में जायद आ रहा है, इसका मादा क्या है, आइन सा और मीम, तो अलिफ नून जायद है, हुरूफ असली नहीं है, तो दो सबब आ गए, एक आलम है और एक अलिफ नून मजीदतान, तो ये गैर मुनसरिफ है। तो ये जो अलिफ नून मजीदतान है ये भी सबब बनते हैं गैर इंसिराफ का। देखिए किताब पर कहते हैं वास्बाब मनासर्फ नो हस्त, असबाब मनासर्फ नो है भाई, अदलो वस्फो तानी सो मारिफा उजमाओ जमाओ तरकीबो वजन फेलो अलिफो नून मजीदतान चुनाचे दरओ मारो। अब हर एक ही मिसालें जिक्र करेंगे। कहते हैं चुनाचे दरओ मारो, आदल अस्त व आलम, उमर में कौन से दो सबब हैं, आदल अस्त व आलम, आदल है और आलम। व दर सुलासु व मसलसु, सिफत अस्त व अदल, सुलासु और मसलसु ये भी सबब बनते हैं गैर इंसिराफ का। इसमें क्या दो सबब, सिफत صفت ہے تین تین, بھئی کیا چیز ہے تین تین, یہ کسی کی صفت بنے گی؟ اور روپے مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ تین تین روپے بچوں میں تقسیم کر دو, دیکھا تقسیم کے موقع پر اس طرح بولتے ہیں, یہ بچوں میں ہر بچے کو کتنے دینے ہیں؟ تین تین روپے, تو کیسے کہیں گے؟ اردو میں کیسے کہیں گے؟ دیکھا بچوں میں تین تین تقسیم کر, دیکھا بولتے ہی دو دفعہ ہیں تین تین روپے بچوں میں تقسیم کر. اگر صرف یوں کہیں بچوں میں تین روپے تقسیم کر دو, دیکھو معنی ہی بدل جائے گا. اس کا معنی صرف تین روپے تقسیم کرو, اور تین تین تقسیم کر دو کیا معنی؟ ہر ایک کو تین تین دے دو. تو یہ ثلاثو اور مثلثو صفت بھی ہیں اور عدل بھی ہے. عدل کیا ہے؟ پہلے کیا تھا؟ یہ ثلاثۃن ثلاثۃن, یعنی کون سا عدل ہے؟ عدل تحقیقی. ہمارے پاس دلیل بھی موجود, کیا دلیل؟ کہ معنی دو دفعہ ہے, معلوم ہوا لفظ بھی اصل میں دو دفعہ تھا بھائی. تو ثلاثو مثلثو میں صفت اور عدل ہے بھائی. تو ثلاثو اور مثلثو میں صفت ہے اور عدل ہے. عدل کون سا؟ عدل تحقیقی, جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اور صفت بھی ہے یہ, کیونکہ اس کے ذریعے کسی چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے. جیسے میں نے مثال بیان کی کہ آپ کہتے ہیں بچوں میں تین تین روپے تقسیم کر دو, یا آپ کہتے ہیں طلبا میں تین تین کتابیں تقسیم کر دو. تو دیکھو یہ تین تین صفت ہے کتابوں کی, کہ کس طرح تقسیم کرنی ہے؟ تین تین بھائی. ودر تلحۃ تانیس است و علم, اور تلحہ میں تانیس ہے اور علم. تلحہ دیکھو نام بھی ہے اور تانیس بھی ہے. کون سی تانیس ہے؟ گولتا ہے. تو یہ دو سبب آ گئے, غیر منصرف ہے. ودر زینب تانیس معنوی است و علم, اور زینب یہ مؤنس کا نام ہے, تو اس میں تانیس معنوی ہے. وعلم اور علم, تانیس معنوی یعنی لفظوں میں کوئی تانیس کی علامت نہیں, لیکن نام کس کا ہے؟ مؤنس ذات کا ہے, تو یہ تانیس معنوی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر دوہرائیں, تانیس معنوی لفظوں میں کوئی تانیس کی علامت نہیں ہے, لیکن نام کس کا ہے؟ مؤنس کا ہے, تو یہ تانیس معنوی ہے. تو تانی سبب بن رہی ہے, اور علم ہے نام بھی ہے, تو دو سبب آ گئے, تو یہ غیر منصرف ہے. ودر حبلا تانیس است بالف مقصورہ, اور حبلا میں تانیس ہے کون سا؟ الف مقصورہ کے ساتھ جو وہ تانیس وہ سبب ہے, اور یہ کتنے سببوں کے قائم مقام؟ دو کے, اس لیے یہاں دوسرا سبب ہی ذکر نہیں کیا. ودر حمراء تانیس است بالف ممدودہ, اور حمراء میں تانیس ہے الف ممدودہ کے ساتھ. تو وہ مؤنس بجائے دو سبب است, اور یہ مؤنس دو سبب کی جگہ پر ہیں. ای مؤنس, یہ مؤنس جو ہیں بجائے دو سبب, یہ دو سبب کی جگہ پر است ہے بھائی. کون سی مؤنس؟ تانیس بالف مقصورہ اور تانیس بالف ممدودہ. ودر ابراہیم عجمہ است و علم, اور ابراہیم کے اندر عجمہ ہے اور علم ہے. علم ہے نام ہے, اور عجمہ ہے یعنی عجمی زبان کا لفظ ہے, غیر عربی کا لفظ ہے. آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کا نام تو قرآن میں بھی آتا ہے اور قرآن تو عربی زبان میں ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں نام آتا ہے, تو ابراہیم یہ تو عربی نام ہے. نہیں بھائی, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عربی زبان کے وجود میں آنے سے پہلے گزرے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, اس وقت عربی زبان کا وجود بھی نہیں تھا, عربی زبان اس کے بعد آہستہ آہستہ بنتی چلی گئی بھائی. جیسے یہ اردو ہے, یہ اردو آج سے 300 سال پہلے اردو کا وجود نہیں تھا, لیکن بادشاہوں کی فوج ہوتی تھی, اس میں ترکی کے لوگ بھی ہوتے, اس میں ایران کے لوگ بھی ہوتے, اس میں عرب لوگ بھی ہوتے تھے, اور تو یہ سارے لوگوں کے گھل مل کر رہنے سے وہ ہر ایک اپنی بات بیان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ بولتا تھا. جب کسی کو زبان نہ آتی ہو آپ بات سمجھانے کے لیے, کبھی اپنی زبان میں لفظ بولتے ہیں, تو ہر تو چیزوں کے نام مختلف مشہور ہوتے چلے گئے. سارے چونکہ مل کر رہتے تھے, تو پھر آہستہ آہستہ ایک نئی زبان بنتی چلی گئی, جس میں ترکی کے بھی الفاظ آ گئے, فارسی کے بھی الفاظ آ گئے, عربی کے بھی الفاظ آ گئے, اور ایک بالکل نئی زبان بن گئی بھائی. تو اس طرح زبان وجود میں آتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عربی زبان کے بننے سے پہلے گزرے ہیں. تو ابراہیم لفظ یہ عربی نہیں ہے بلکہ عجمی ہے بھائی، عجمی ہے۔ تو کہتے ہیں ودر ابراہیم و عجما است و علم، ابراہیم کے اندر عجما ہے اور علم دو سبب ہو گئے۔ ودر مساجد و مسابح جمع منتحل جموع، اور مساجد اور مسابح کے اندر جمع منتحل جموع جو ہے بجائے دو سبب، یہ دو سببوں کی جگہ ہے یعنی ان کا قائم مقام ہے۔ ودر بعل بک کا ترکیب است و علم، اور بعل بک میں ترکیب ہے و علم، اور نیز یہ نام ہے علم ہے۔ ودر احمد وزن فعل است و علم، اور احمد میں وزن فعل ہے اور علم ہے۔ احمد ایک تو علم ہے نام ہے، اور دوسرا وزن فعل احمد۔ اکرم، اکرم یکرمو، اکرما وزن آ گیا کہ نہیں؟ آخری حرف کو نہ دیکھیں، اکرما آپ کہیں گے اکرما میں تو میم پر بھی زبر ہے، اور احمد میں میم پر زبر نہیں، نہیں آخری حرف نہیں، آخر میں تو عموماً وقف کر لیتے ہیں، بولتے ہوئے انسان اس پر رک جاتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، باقی وزن سارا وہی ہے۔ اکرم احمد، تو یہ کیا ہے؟ وزن فعل۔ تو ایک وزن فعل آیا اور ایک علم ہے۔ ودر سکران الف و نون زائدتان است و وصف، سکران، سکران لفظ اس میں الف و نون زائدتان ہے، یہ الف اور نون کیا ہے؟ زائد۔ و وصف، اور نیز یہ کیا ہے؟ وصف بھائی، وصف بھائی، تو وصف بھی ہے اور الف نون زائدتان بھی ہے۔ وصف کیا؟ سکران کا کیا معنی؟ سکران کا معنی ہے مدہوش بھائی، مدہوش، وہ شخص جو نشے میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سکران کہتے ہیں، سکران، مدہوش بھائی۔ سکران کا کیا معنی ہے؟ مدہوش بھائی۔ تو مدہوش دیکھو یہ کسی کی صفت ہوگی، کوئی آدمی ہوگا جو کیا ہوگا؟ مدہوش۔ تو ایک وصف ہے اور ایک الف نون زائدتان ہے۔ ودر عثمان الف نون زائدتان است و علم، اور عثمان کے اندر الف نون زائدتان بھی ہیں اور علم۔ یہ الف نون زائدتان نام میں بھی آتے ہیں، علم میں بھی اور وصف میں بھی، توجہ ہے؟ الف نون زائدتان یہ علم میں بھی آتے ہیں اور وصف میں بھی۔ سکران اس میں بھی الف نون زائدتان ہے اور ساتھ کیا جمع ہے؟ وصف۔ اور عثمان اس میں بھی یہ علم بھی ہے اور الف نون زائدتان بھی ہیں بھائی۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ یہ وصف اور علم جمع نہیں ہو سکتے، علم اور وصف جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی لفظ ہو اور وہ غیر منصرف ہو، اور کوئی پوچھے کسی سے کہ اس میں کون سے دو سبب ہیں، اور وہ کہے علم ہے اور وصف ہے، نہیں بھائی، علم اور وصف کبھی ایک لفظ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں جمع ہو سکتے بھائی؟ آپ معنی میں غور کر لیں، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا۔ علم کسی معین ذات کے لیے مقرر ہوتا ہے، زید سے زید ہی مراد ہے، بکر یا خالد مراد نہیں، اور جب میں بکر کہوں گا تو بکر سے بکر ہی مراد ہے، زید یا عمر مراد نہیں۔ تو علم جو ہوتا ہے وہ معین ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور وصف وہ غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے، جیسے العالم، العالم زید کی صفت بھی ہو سکتی ہے، بکر کی صفت بھی ہو سکتی ہے، خالد کی صفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو وصف ذات غیر معین پہ دلالت کرتا ہے، اور علم ذات معین پر دلالت کرتا ہے، تو دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جیسے دن اور رات، دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، یا جیسے صبح اور شام، صبح اور شام ایک دوسرے کی ضد ہیں، جمع نہیں ہو سکتے۔ اور کیا مثال؟ سردی اور گرمی، سردی اور گرمی ایک دوسرے کی ضد ہیں، سردی ہے تو گرمی نہیں، گرمی ہے تو تو جیسے یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح علم اور وصف بھی جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی لفظ میں علم بھی ہو وہ اور وصف بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم کس پر دلالت کرتا ہے؟ ذات معین پر، اور وصف ذات غیر معین پر دلالت کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، وہ تحقیق غیر منصرف از کتب دیگر معلوم شود، اور تحقیق غیر منصرف، اور غیر منصرف کی تحقیق یعنی اور مزید تفصیل جو ہے، از کتب دیگر معلوم شود، دوسری کتابوں سے معلوم ہو جائے گی۔ غیر منصرف کی تحقیق دوسری کتابوں سے معلوم ہو جائے گی، یعنی یہ ابتدائی کتاب ہے، یہاں میں نے مختصر باتیں ذکر کر دیں، مزید تفصیل اگلی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو غیر منصرف کی مزید تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ چلیے بس کریں بھائی، حاصل کلام یہ، آج آپ نے منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں پڑھا، غیر منصرف وہ ہے جس میں دو اسباب منع صرف یا کوئی ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے، اور منصرف وہ ہے جس میں دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ ہو، بھائی منصرف تو منصرف ہے، اور اسباب منع صرف نو ہیں، اور ان میں سے میں نے مختصر تعارف کروا دیا. عدل کے بارے میں تھوڑی تفصیل بیان کر دی کہ عدل دو قسم پر ہے. عدل کا معنی پھیرنا، صیغے کو ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف پھیرنا، اور یہ دو قسم پر ہے، ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری. عدل تحقیقی وہ ہے جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہو، اور عدل تقدیری وہ ہے جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ مثالیں ذکر کیں، اور پھر میں نے آخر میں آپ کو بتلایا کہ علم اور وصف دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر، اور وصف دلالت کرتا ہے ذات غیر معین پر. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.